सूरह तुल इखलास, सूरह तुल इखलास कुरआने करीम की बहुत अजीम सूरत है, इसलिए कि ये सूरत कुरान का तहाई है, 1/3 है कुरान, क्योंकि इसका जो माना है वो है जो 1/3 कुरान में बयान हुआ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला के बारे में 1/3 हिस्सा है, और उसकी सिफात के बारे में 1/3 हिस्सा, हलाल और हराम और फ़राइज़ के बारे में, और कवानीन, डूज एंड डोंट्स हैं, 1/3 का ससुल अम्बिया और जन्नत जहन्नुम का जिक्र है। तो जो 1/3 हिस्सा अल्लाह ताला के बारे में है, वो अल्लाह ताला की जो तारीफ है वो इस सूरत में बयान की गई है। एक बद्दू आया और उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप किस खुदा की तरफ बुलाते हैं, फरमाया अल्लाह की तरफ। वो बोला वो सोने का बना हुआ है या चांदी का या लकड़ी का या तांबे का, उसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि वो तो अपने खुदाओं को इन्हीं चीज़ों का बनाते थे ना। तो उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। ये वो सूरत है जो बच्चों तक की ज़ुबान पे होती है और शुरू में सिखाई जाती है, और अल्लाह ताला ने अपना तारुफ इस सूरत में कराया है। वो लोग सोचते थे कि हम तो लीनियज को ऊपर पहुँच जाते थे, इसका हसब नसब क्या है, तो वो कहते थे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खुदा का नसब क्या है, तो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया यहाँ पे। इतनी मुख्तसर सूरत है लेकिन ईमानियात के लिहाज से, बिलीफ्स के लिहाज से, अल्लाह ताला के बारे में ये बहुत जामे सूरत है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और यही वो सूरत है जो यानी जो ईमान बिल्ला को समराइज कर देती है, समरी है उसकी। और ये वो सूरत है जिसकी बेस के ऊपर हम बाकी सारे अदियान से फर्क है, यानी कोई भी दीन जिसकी भी कोई पूजा करता है उनके साथ हमारा फर्क क्या है, यानी हम किस तरह से हम कहें कि हमारा दीन जो है वो मुकम्मल है और बरहक है, हक है, सच है। कौन सी चीज हमें मुमताज करती है, कौन सी चीज डिफ्रेंशिएट करती है दूसरों से, क्योंकि जब भी वो अपने खुदा की बात करेंगे, उनके खुदा की जो भी वो सिफात बयान करें, आप इस सूरत के जितनी आयात हैं उनके ऊपर रख के देखें, वो इस पे पूरे नहीं उतरेंगे, सिर्फ एक अल्लाह की जात है जो इस पे पूरी उतरती है। ये है हमारे रब का तारुफ, ये है उसकी पहचान, ये है वो जात, ये है जो हमें आगे जाके लोगों को बताना है कि हम उस रब की तरफ तुम्हें बुलाते हैं जो ये है, जो ये है, जो ये है, उसकी ये सिफात है। दुनिया में कोई बंदा वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो जिसकी पूजा करता है, वो उसके बारे में ये नहीं बयान कर सकता जो यहां पर अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया। इसलिए इस सूरत को अच्छी तरह समझें और पढ़ें, क्योंकि यही है बेस हमारे दीन की। एक तरफ सूरह काफिरून आपने पढ़ी, शिर्क से बर्रात, और एक तौहीद के ऊपर सबसे बड़ी अजीम जो सूरत है वो ये सूरतुल इखलास है। इखलास किससे है? सिंसेरिटी से, खलूस, यानी जो इसको समझ लेगा ना उसकी इबादत खालिस हो जाएगी, अल्लाह के लिए हो जाएगी। और खलासा कहते हैं किसी एक चीज को दूसरी से जुदा करना, तो ये सूरत भी ऐसी है जो इंसान को शिर्क से जुदा कर देती है। किसी के अंदर शकूक व शुभात है अल्लाह ताला के बारे में, या कोई गलत अकीदा है, या कोई गलत ख्यालात है, वो सारे उन शकूक व शुभात को दूर कर देती है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है, वो सबको ख़त्म कर देती है। ये सूरत इतनी अजीम है, हालांकि ये याद करने में बहुत आसान है, हालांकि ये बहुत मुख्तसर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना ज़्यादा जो इसका मैसेज है या जो इसके कंटेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके तकरीबन 20 नाम लिखे गए हैं, लेकिन हम थोड़े से नाम ही देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए ना, जिस सूरत के जितने ज्यादा नाम होते हैं ना, उससे भी उसकी अजमत का पता चलता है कि कितनी ऑनरेबल है। इसका नाम सूरतुल इखलास जो सबसे मशहूर है, फिर सूरतुल समद भी है, और समद सिर्फ यहाँ पे आया है कुरान करीम में, और सूरतुल तौहीद भी है, सूरतुल असास भी है, असास यानी बुनियाद, सूरतुल मुकशकिशा भी है। मुकशकिशा मैंने आपको वही बताया था जो मैं, ये दोनों सूरतें मुकशकिशा हैं, मुकशकिशा तैन इनको कहा जाता है, सूरह इखलास और सूरतुल काफिरून का, दोनों मुकशकशाएं यानी बीमारी से निकालती हैं इंसान को, और शिर्क की बीमारी से। और सूरतुल नूर भी है, सूरतुल नजात भी है, सूरतुल विलाया भी है, सूरतुल अमान भी है, इससे अमान मिल जाती है, अमन में आ जाता है इंसान जब इस सूरत को समझ लेता है। और इस सूरत की बड़ी फजीलतें हैं। और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत हाबिस से, ए हाबिस क्या मैं तुम्हें उन कलिमात की खबर ना दूं जो अल्लाह ताला से पनाह तलब करने में सबसे अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरतुल सॉरी ये तो सूरह फलक के बारे में है, सूरतुल फरक और सूरह नास का फरमाया, वो सूरतुल फलक के बारे में, अगर इसके बारे में आता है आपने सहाबा को जमा किया, और जब वो जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और सूरह इखलास पढ़ी और वापस चले गए। तो सहाबा सोच रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक तहाई कुरान आज सुनाऊंगा, और ये सिर्फ सूरह इखलास पढ़ के चले गए, तो शायद कोई वही आ रही है जो आप वापस चले गए, और वहाँ आएंगे वापस और आके बाकी कुरान पढ़ेंगे। तो वो वहीं बैठे रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वहीं बैठे हैं, तो आप वापस आए, फरमाया मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक तहाई कुरान सुनाता हूँ, तो यही है एक तहाई कुरान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आती है, तो आपने फरमाया जिसके अंदर कि क्या तुम में से कोई इसे ये कर सकता है कि एक रात में एक तहाई कुरान पढ़ लिया करे? तो सहाबा ने कहा ये तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तो आपने फरमाया कि तुम ये सूरत पढ़ लिया कर, कुल हु अल्लाहु अहद, ये तहाई कुरान के बराबर है। और एक रिवायत में ये भी है कि ये ऐसी सूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कहीं जा रहे थे, अबू हुरैरा भी साथ थे, तो आपने एक शख्स को इस सूरत की तिलावत करते हुए सुना, फरमाया वाजिब हो गई। अबू हुरैरा ने पूछा क्या वाजिब हो गई? फरमाया जन्नत, यानी जो एक दफा पढ़ते हुए सुना तो फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। और सोचे कितनी दफा आप जैसे फजर की दो सुन्नतों में सूरह काफिरून के बाद क्या है, सूरह इखलास पढ़ने का जिक्र है, फिर इसी तरह तवाफ के भी नफलों में सूरह काफिरून के बाद इसके पढ़ने का जिक्र है कि सेकंड रकत के अंदर आप इस सूरत को पढ़ें। तो ये मक्की सूरत है, बड़ी इसके अंदर तौहीद है, इसका टॉपिक ही तौहीद, इसका यानी ऐसी चीज जो बुनियाद है इस्लाम की। और इसके बारे में एक और बहुत ही प्यारी रिवायत आती है कि बुखारी में है वो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर कहीं भेजा था, जिस वक्त वो पलटे तो उन्होंने कहा या रसूल्ला हम पे जिसको आपने इमाम बनाया था वो हर नमाज की कि रात के खात्मे पे सूरह कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। आपने फरमाया उनसे पूछो वो क्यों ऐसा करते थे। पूछने पे उन्होंने कहा कि ये सूरत जो है इसकी ये अल्लाह ताला की सिफत है, तो मुझे इसलिए इसका पढ़ना बहुत ही पसंद है, यानी अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई है। तो आपने फरमाया उनको खबर दे दो कि अल्लाह ताला इस वजह से आपसे मोहब्बत करता है। इसी तरह बुखारी में एक और रिवायत है कि एक अंसारी थे, वो मस्जिद कुबा के इमाम थे, उनकी आदत थी कि जब सूरह फातिहा ख़त्म करते थे तो फिर ये सूरत को ज़रूर पढ़ते थे, फिर और उसके बाद जो भी सूरत पढ़नी होती थी या जहाँ से भी और कुरान पढ़ना होता था पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे सूरह फातिहा हम हमेशा पढ़ते हैं ना हर रकत में, इसी तरह वो सूरह फातिहा के बाद ये सूरह इखलास पढ़ते और उसके बाद कुछ और स्टार्ट करते। तो एक दिन उनके मुक्तदियों ने कहा कि आप इस सूरत को हमेशा पढ़ते रहते हैं, कोई फिर साथ दूसरी सूरत मिलाते हैं, या तो आप सिर्फ इसको पढ़ लें या फिर इसको छोड़ के दूसरी सूरत पढ़ लिया कर। उन्होंने कहा मैं तो जिस तरह करता हूँ मैं ऐसे ही करूँगा, तुमने चाहना है तो मुझे इमाम रखो, नहीं चाहते तो मैं छोड़ देता हूँ। अब उन्होंने जाके ऐसा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने शिकायत की कि ये इमाम ऐसे हैं कि हमेशा इस तरह से करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया और फरमाया तुम क्यों अपने साथियों की बात नहीं मानते, हर रकत में इस सूरत को क्यों पढ़ते हो? वो कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत तक पहुंचा दिया, यानी जो इससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत तक पहुंच जाएगा, इतनी फजीलत वाली ये सूरत है। और इसी तरह मुसनद अहमद की हदीस में एक शख्स ने आपसे कहा मैं इस सूरत से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, आपने फरमाया इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत तक पहुंचा दिया। एक शख्स ने किसी को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना, वो बार बार इसी को दोहरा रहा था। सुबह के वक्त आके इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। उसने मतलब सोचा कि ये क्या सिर्फ एक सूरत ही पढ़ता जा रहा है, एक सूरत, तो दूसरा बंदा जो सुन रहा था ना, उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि वो तो बस यही पढ़ता जा रहा था, यानी उसने हल्का समझा इसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत तो मिसल तहाई कुरान की है। ये बुखारी की रिवायत है। तो यानी कितने फजाइल हैं इस सूरत के, आपने देखे कि जन्नत तक को भी पहुंचा देती है। फिर इसी तरह ये सूरत वो भी है कि जो वाजिब कर देती है जन्नत को, ये सूरत वो भी है जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान को मिल जाती है। और इसी तरह एक रिवायत में ये आता है, अब्दुल्ला बिन हबीब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे कि आप तशरीफ़ लाएं और नमाज़ पढ़ाएं। आप आए और मेरा हाथ पकड़ के फरमाने लगे पढ़, मैं चुप रहा। फिर आपने फरमाया पढ़, मैंने कहा क्या पढ़ूँ? आपने फरमाया हर सुबह शाम, यानी सुबह को भी और शाम को भी तीन तीन मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया कर, ये काफ़ी हो जाएगी। और नसाई की एक रिवायत में है कि ये हर चीज़ से तुझे काफ़ी हो जाएगी, यानी आप सुबह को उठें तब भी ये तीन टाइम ये तीनों सूरतें, और रात को सोते वक्त भी। और फिर ये भी रिवायत है कि जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 दफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर देगा। तो हज़रत उमर ने पूछा, या रसूलल्लाह इस तरह तो हम बहुत सारे महल बना लेंगे। तो आपने फरमाया तो अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा दे सकता है, यानी वो तो अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। अबू याला में आप सल्लल्लाहु, ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन काम हैं जो उन इनको ईमान के साथ कर ले, वो जन्नत के तमाम दरवाजों में से जिससे चाहे जन्नत में चला जाए, और जिस हूर से चाहे उसका निकाह कर दिया जाए, जो अपने कातिल को माफ कर दे, जो पोशीदा कर्ज अदा कर दे, जो हर नमाज के बाद 10 मरतबा ये सूरत पढ़ ले। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह इन तीनों में से एक कोई काम कर ले तो फिर क्या उसके लिए भी यही है? आपने फरमाया हाँ। अल्लाह हू अकबर, एक भी जो कोई कर लेगा, यानी हम हर नमाज के बगैर 10 दफ़ा पढ़ लें तो हम भी इस तक पहुंच सकते हैं। और ए हज़रत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं कि एक रोज़ मेरी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो मैंने जल्दी से आपका हाथ थाम लिया और कहा, या रसूल अल्लाह मोमिन की निजात किस अमल में है, किस तरह मतलब मुझे निजात मिले? तो आपने फरमाया ए उकबा, जुबान को कंट्रोल में रखो, अपने घर में रहो और अपनी खताओं पर रो। फिर दोबारा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने हाथ पकड़ लिया और फरमाया, आपने मेरे खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और फरमाया उकबा, क्या मैं तुम्हें तौरात इंजील जबूर और कुरान में उतरी हुई तमाम सूरतों से बेहतरीन सूरत ना बता दूं? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह ज़रूर बताएं। आपने फरमाया बस कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास, ये पढ़ा दी आपने। फिर फरमाया उकबा इनको ना भूलना, हर रात इन्हें पढ़ा करना। फिर फरमाते मैंने तो कभी भी नहीं इनको छोड़ा, फिर सारी जिंदगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये इतनी ज्यादा फजीलतें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रात के बाद जब बिस्तर पे जाते थे तो हर रात इन तीनों सूरतों को पढ़ के अपनी दोनों हथेलियां मिला के इन पे दम करके और जिस्म मुबारक पे फेरते थे। तो ये आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त भी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही अमल किया था, आपके हाथों पे फूंक दिया था और फिर आपके हाथों को फेर दिया था, या आप ये एक अमल करते थे। तो ये सूरत हमें क्या सिखाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए, क्योंकि एक आदमी ने आके पूछा ना कि आप हमें बताएं अपने अल्लाह के बारे में, अपने रब के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आप बता दें इनको, हुआ वो अल्लाह, वो अल्लाह कौन है? आहद, हुआ एक प्रोनाउन है, जमीर है, तो हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अहद है। अच्छा, अब अहद में और वाहिद में एक फर्क है, ये नोट करें। वाहिद तो कहते हैं ना एक को, वन को, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार, अल्लाह ताला का नाम वाहिद भी है, एक है वो, ना दो है ना तीन है ना कोई है। लेकिन अहद में एक और चीज भी है, अहद में यूनिक है, यूनिक है, यानी एक तो है वो यूनिक भी है, अकेला है, यकता जिसको कहते हैं, आहद, अकेला। तो ये बात कि अल्लाह ताला अकेला है, को जब हम एक कहें तो कोई शायद कह सकता है कि कोई और भी हो सकता है, लेकिन जब यकता कह देते ना, बिल्कुल अकेला, अलोन है, यूनिक है, तो फिर कोई और नहीं हो सकता साथ। इसीलिए हजरत बिलाल को जब टॉर्चर किया जाता था तो उनके मुंह से क्या निकलता था, आहदुन आहद, आहदुन आहद, क्योंकि ये बात काफरों को इस कदर नागवार गुजरती थी, लेकिन यही कलमा उनके लिए ताकत था। तो आहद वो माने यहाँ पे बना बताता है कि अल्लाह ताला यकता है, यूनिक है, अपनी जात में भी, अपनी सिफात में भी, अपने असमा में भी, अपने अफआल में भी, वैसा कोई है ही नहीं। जैसे आप कहते हैं ना, हर हर एक का हम आजकल यूनिक चीज़ लेने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ तो सारों के अंदर ही है, लेकिन ये तो ये यूनिक है, कोई खास ही है, ऐसी कोई और चीज़ है ना हो। तो अल्लाह ताला की चाहे सिफात देख लें, चाहे उसके अस्मा देख लें, चाहे उसके अफ़ाल देख लें, चाहे उसकी ज़ात देख लें, वैसा कोई है ही नहीं। अगर उसके एक भी उसका मसलन हम कहते हैं अल्लाह ताला असमी है, मगर इंसान कहता है मैं भी तो सुनता हूँ, अल्लाह ताला बसीर है तो मैं भी तो देखता हूँ, लेकिन जब हम अल्लाह ताला के लिए बोलते हैं ना असमी, तो वो अलग है, और इंसान के लिए बोलते हैं तो वो अलग है। इंसान तो आज सुनता है, कल मर जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, और इंसान का सुनना लिमिटेड है, वो अभी यहाँ पे बैठा सुन रहा है, उसको नहीं पता अगले कमरे में क्या बात हो रही है, वो जानता ही नहीं, कोई अपने कानों में बात कर रहा है उसको सुनता ही नहीं। अल्लाह ताला जब सुनता है तो वो हर एक शय सुन रहा है, वो दिलों की धड़कन को भी सुनता है, और दिल में अभी ख्याल आया भी नहीं है उसको भी सुनता है, और दिल की सोच को भी सुनता है, और जो हल्की बोलो तब भी सुनता है, और बुलंद आवाज में बोलो तब भी सुनता है, जानवर बोले उनकी भी सुनता है, इंसान बोले उनकी भी सुनता है, और उसकी उसका सुनना कभी खत्म नहीं होगा, जैसे इंसान का सुनना उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। तो लैसा का मिसली ही शही, उस जैसा कोई है ही नहीं। और फिर उसकी बसारत कैसी है, उसका देखना कैसा है, इंसान का देखना क्या है, एक लिमिटेड हद तक उसकी नजर जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। फिर इंसान अगर एक चीज देख रहा होता है तो आगे कोई आड़ आ जाए तो उसे आगे नहीं देख सकता, दीवार आ जाए उसे आगे नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा देखना है कि वो अर्श पे है, लेकिन वो फर्श पे जो कुछ हो रहा है, उसकी कायनात में जो कुछ हो रहा है, हमा वक्त उसको देख रहा है। हम एक डायरेक्शन में देखते हैं तो दूसरी तरफ नहीं देख सकते, आगे को देखते हैं तो हमें नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, अल्लाह ताला हर चीज़ को हर वक्त देख रहा है और हमेशा देख रहा है, और चूंटी काली चूंटी काले पत्थर पे अंधेरी रात में चल रही, अल्लाह ताला उसकी टांगों की हरकत को भी देखता है और सुनता है, कोई चीज आड़ नहीं, कोई चीज रोक नहीं सकती उसको। इंसान कहता है अल्लाह ताला मुदब्बिर है, लेकिन मैं भी तो प्लानिंग करता हूं, तुम्हारी प्लानिंग को देखो कि कितनी दफा रिसर्चेस करते हैं, इतनी रिसर्च करके फिर उसके बाद कोई थ्योरी सामने लेकर आते हैं, कुछ दिनों बाद पता चलता है इसमें कोई फ्लॉ था। अल्लाह ताला की प्लानिंग कैसी है कि लाखों करोड़ों साल पहले, 50,000 साल पहले आसमानों जमीन के बनने से भी उसने सब चीज तकदीर में लिख दी, और वो वैसे ही है, ये नहीं कि अब वो चीज़ बनी तो फिर उसको पता चला कि इसमें कोई चीज़ चेंज करनी है, अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए, नहीं, कोई रेनोवेशन की ज़रूरत नहीं, कोई अपग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं, कोई थ्योरी नहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कोई रिसर्च आई तो उसके मुताबिक एक नई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसने जो प्लानिंग की वो वैसे ही है। इंसान की प्लानिंग नाकिस है, नामुकम्मल है, तो अल्लाह ताला यूनिक है अपनी हर सिफत में, हर इसम में, इंसान ऐसे नहीं हो सकता, कभी करीब भी नहीं जा सकता उसके। तो आहादुन इसमें तनवीन है, आप देखें, और तनवीन ताजीम के लिए होती है, तनवीन ले तादीम, यानी अजमत वाले, वो अजमत वाला है, हर फेल में, हर अपनी बात में। अल्लाह अकबर, अल्लाहु समद, अल्लाह ताला असमद है। असमद के कई माने मुफस्सिरीन ने किए हैं, असमद वो जिसकी तरफ सारी मखलूक रजू करती है अपनी हाजतों के लिए, अपनी जरूरियात के लिए। हम सिर्फ तीन माने यहाँ पे देख लेते हैं, मेन जो है सारी मखलूक उसकी तरफ रजू करती है। नंबर 2, वो किसी की तरफ रजू नहीं करता, किसी भी अपनी जरूरत के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अलगनी है। और नंबर 3, वो अलकामिल है, मुकम्मल है, परफेक्ट है। इसके अलावा भी समत के जो माने दिए किए गए हैं, जैसे एक माना वो अपनी सरदारी में, अपनी शराफत में, अपनी अजमत में, अपने इल्म में, अमल में सबसे बड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको नंबर 3 माना बताया कि कामिल है। फिर ये भी माने कहेंगे कि तमाम मखलूक के फना हो जाने के बाद भी जो बाकी रहने वाला है, जिसको हमेशा बका है, सबकी हिफाजत करने वाला, जिसकी जात लाजवाल है, फानी नहीं है, गैर फानी है वो, और समद वो भी है जो ना कुछ खाता है ना उससे कुछ निकलता है, और समद वो भी है जो नूर है, जो रोशन है, जो चमक दमक वाला है। यानी समद के बहुत सारे माने उसके अंदर ये भी कि ना वो पैदा हुआ है ना उसकी औलाद है, ना वो एक वक्त उसके ऊपर मौत है, ना उसके कोई वारिस है, उसकी जिंस का कोई है ही नहीं, उसकी मिसल कोई है नहीं। अब आप बताएं इसके ऊपर कौन सा, आप दुनिया के जितने झूठे खुदा बनाए हुए हैं कौन इसके ऊपर पूरे उतर सकते हैं? कोई भी नहीं। यहीं पे आगे टांग टूट जाती है उन सब की जो शिर्क करते हैं। ला के दिखाएं इसके ऊपर, यहां तक ही ला के दिखा दें, अल्लाहु समद। इसीलिए कोई इंसान समद नहीं हो सकता जो स्वाद के साथ है। सीन के साथ एक अलग माना है, अंतुम सामिदून, वो तो गुजर चुका है सूरह नजम में तो। लेकिन सौद के साथ समद, ये सिर्फ एक अल्लाह की जात ही हो सकती, कोई और नहीं हो सकता, ये खास उसका ही वसफ है, सब की जरूरियात पूरी करने वाला। लेकिन उसको अपने लिए कुछ किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं कि ये मेरी बंदगी करें या मेरी तस्बीह करें या मेरी अजमत की बयान करें या कोई फरिश्ते हों जो ये काम करते रहें और वो कारिंदे हैं उसके। नो, वो है जो सबसे बुलंद है। तो फिर समझ से ही सब कुछ मांगना चाहिए ना, फिर मुसीबत में उसी को याद करना चाहिए ना, फिर उसी की तरफ रुजू करना चाहिए ना। अब वो कामिल है, उसकी सारी पावर कामिल है, उसकी हुक्मरानी कामिल है, तो उसके इस नाम से उसको पुकारें, या समद। बहुत बड़ा अजमत वाला नाम है। और यहाँ इसी के अंदर शिर्क की जड़ कट जाती है, अगर आप इस एक नाम के ऊपर आप रख लें अपना ईमान, तो कौन है जिसका आप कहेंगे कि वो भी समद हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। ये आपके अल्लाह का, अल्लाह सुबहाना ताला का तारुफ है इस सूरत के अंदर। इस तारुफ को लोगों को बताएं, लोग क्यों दूसरों को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक जात है जो ऐसी ही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं हम एक अल्लाह को पूछते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। कभी आपने बताया कि हमारा अल्लाह कौन है? और तुम बताओ कि तुम्हारे जिन खुदाओं की तुम पूजा करते हो वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया ना, तुम सारे नंगे हो सिवाय जिसको मैं लिबास देता हूं, तुम सब भूखे हो जिसको सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं, तुम मुझसे मांगो। लम यलिद, ना उसने जना यानी ना उसने पैदा किया, यलिद पैदा किया कि यानी उसकी जात से कोई औलाद नहीं पैदा हुई। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि नहीं चलो उसे कोई पैदा तो नहीं हुआ लेकिन अडॉप्ट तो कर लेते ना, जैसे ये लोग कहते हैं कि अडॉप्ट कर लिया उसने ईसा अलैहि सलाम को, तो अल्लाह ताला ने इसकी भी जड़ काट दी। मत तख़ज़ अल्लाहु मिन वलद, अल्लाह ताला ने तो कोई बेटा बनाया ही नहीं, किसी को बेटा लिया ही नहीं, यानी किसी को अडॉप्ट किया ही नहीं। तो यहां पे बता दिया गया उसने किसी को पैदा नहीं किया, ये क्यों पहले बताया गया उसके बाद कहा गया वलम यूलद, और ना वो पैदा हुआ किसी से, ना उसके कोई वालदैन है, लेकिन पहले कहा गया उसकी औलाद कोई नहीं। हालांकि देखिए अगर वैसे सोचा जाए तो हम सोचते हैं ना पहले वे ये बताना चाहिए कि इसके वालदैन नहीं है, फिर उसके बाद आएगा कि औलाद नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो क्यों पहले आया? लम यलिद पहले क्यों आया और लम यूलद बाद में क्यों आया? इसलिए कि जो शिर्क है वो इसमें नहीं है कि लोग कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के कोई वालदैन, शिर्क है ही किस में कि उसकी औलाद है, किसी ने बेटा बना दिया, किसी ने बेटियां बना दी, किसी ने कुछ, तो उसकी निगेशन की गई यहां पे कि ना उसकी कोई औलाद है, ना उसने किसी को जन्म दिया, ना वो किसी से पैदा हुआ। बताओ वो दुनिया में कौन से ऐसे हैं जिनको कोई कह दे कि ये किसी से जन्म लिया ही नहीं, चलो किसी की औलाद नहीं है वो कि शायद कोई कह दे, लेकिन इसने किसी से जन्म ही नहीं लिया, कौन है वो? चाहे वो ईसा अलैहि सलाम उठा लें, चाहे वो कोई और औलिया अल्लाह उठा लें, चाहे वो कोई कोई भी इंसान उठा लें, वो किसी कोई ना कोई तो उसके वालदैन होंगे ना जिनसे वो पैदा हुआ, आसमान से गिर के तो नहीं नीचे आ पड़ा था ना, शिर्क की जड़ कट गई। तो जितनों को पूजा जाता है, जिनसे हाजतें मांगी जाती हैं, असमद को छोड़ के कोई असमद नहीं हो सकता। तो बेवकूफी है ना कि एक वो रब है जिसको किसी की जरूरत है, सबकी हाजतें वो पूरी करता है, चाहे समंदर है, चाहे सहरा है, चाहे जंगल है, चाहे आसमान पे, चाहे जमीन पे, सबकी हाजतें वो ही पूरी करने वाला। लेकिन वो बेनियाज उसको क्यों कहा जाता है, इसका मतलब बेनियाज क्यों किया गया, इसलिए कि उसको किसी की भी नहीं जरूरत है। अरे इसको ना अगर आप, अल्लाह अकबर, इसको आप इस सूरत को, एक को अगर आप खोल के बयान करना शुरू करें ना, और एक एक चीज आप देखना शुरू करें, तो आप हैरान हो जाएंगे इस सूरत की। आप तफसीर ही बयान करते रहे, इस सूरत की तफसीर नहीं खत्म हो सकती, जाए जहां तक कि अल्लाह ताला कितना बेनियाज है और तुम कितने मोहताज हो, इसको डिफाइन करना शुरू कर दें। फिर उसने किसी को जना नहीं है, तो यहूदियों का, ईसाइयों का, मुशरिकों का, सबके अकीदे की जड़ कट गई। फिर वो किसी से पैदा नहीं हुआ, पैदा हुआ होता तो फिर कोई टाइम होता जिसमें वो पैदा हुआ था, तो फिर वो कोई टाइम खत्म होने का भी होता, लेकिन जो चीज भी पैदा होती है ना, वो चीज एक दिन खत्म होती है। शैतान इंसान को कहता है कि देखो कि इसको किसने पैदा किया, इसको किसने पैदा किया, इसको भी किसने पैदा किया। जब इंसान कहता था अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया, आपसे सलम ने ये फरमाया है कि ये शैतान कहेगा कि वो फिर कहता है फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो ये याद रखना कि ये शैतान की बात है, ये जो इंसान ये सोचने शुरू किया, अच्छा फिर क्या कोई भी नहीं था, अच्छा कोई तो वक्त होगा कोई, ये शैतानी ख्यालात है, उसी वक्त आउजु बिल्ला पढ़े। हमारी अकल नहीं समझ सकती, हमारी अकल नहीं वहां तक जा सकती। लम यूलिद, वो नहीं जना गया, वो पैदा हुआ नहीं, अगर पैदा होता तो मौत भी आती, लेकिन वो पैदाइश से भी पाक और मौत से भी पाक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वल अव्वलु वल आखिर, और ये इसके अंदर देखिए अल्लाह ताला के कितने अस्माउ सिफात आ गए ना, वो समद है तो फिर वो समद है, तो फिर जाहिर ही बात है अल मुजीब भी वही है, अल वदूद भी वही है, रहीम भी वही है। वो तो जाहिर है कोई किसी की केयर करता है तो उसकी जरूरतें पूरी करता है ना, किसी के ऊपर रहम करता है तो उसको देता है ना, वो किसी की सुन रहा है तो उसको देता है ना, वो किसी को देख रहा है तो वो जानता है ना, वो बाखबर है, बाइल्म है, देख रहा है, सुन रहा है, तभी तो उसकी जरूरत पूरी करेगा। जिसको पता ही ना हो किसी की क्या जरूरत है, वो कैसे पूरी करेगा। तो अल्लाह ताला वो है, ये अल्लाह ताला का तारुफ कराया जा रहा है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, यानी वो ऐसा है कि लम नहीं, यकुन है, लहू लिए उसके, कुफुवन बराबर का, कोई कुफु नहीं है उसका, कोई बराबर का नहीं है, आहद कोई एक भी नहीं, कोई एक भी उसके बराबर का नहीं है। क्या मतलब पता चला कि अल्लाह ताला आहद है, एक है उसकी वो, और समद है, समद यानी सब उसका इरादा करते हैं, वो किसी का इरादा नहीं करता, इसलिए उसको किसी की जरूरत नहीं, सब उसकी तरफ भागे आते हैं, सब उससे मांगते हैं, चाहे जुबाने हाल से मांगे, चाहे जुबाने काल से मांगे, ना वो किसी का बाप है और ना ही वो किसी का बेटा है, और उसके जैसा तो कोई है ही नहीं है, हमसर नहीं जिसको कहते ना, यानी वो मुशरिकिन का रद्द हो गया ना, जो अपने बुतों को सोचते थे कि वो अल्लाह के हमसर हैं, तो वो ये जड़ कट गई। तो उसके चूंकि कोई उसका हम जिन्स है ही नहीं, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो उसके बराबर का भी कोई नहीं हो सकता, तो ये भी इसमें भी शिर्क की जड़ कटी कि शिर्क कैसे तुम कर सकते हो, किसी को कैसे बिठा सकते हो अल्लाह के बराबर, और उसकी कैसे इबादत कर सकते हो, क्योंकि कोई भी उसके जैसा नहीं है। तो ये सूरत बहुत अजीम सूरतों में से है, और इसको पढ़ना चाहिए और इसका मतलब समझना चाहिए। हम इस सूरत को अक्सर नमाजों में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ते होते कि कोई हमें ये सूरत से मोहब्बत है, या हाय ये सूरत मुझे इतनी पसंद है क्योंकि ये मेरे रब का तारुफ है, इसमें मेरे रब की सिफात बयान की गई हैं, और मुझे मज़ा आता है इसमें कि जब मैं रब के बारे में पढ़ती हूँ, उसके बारे में बोलती हूँ, तो इतना मुझे इसका मज़ा आता है। इसलिए नहीं हम पढ़ते, हम इसलिए पढ़ते हैं जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। सूरह कौसर इसलिए पढ़ते हैं, वो भी सबसे छोटी सूरत, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में, और ये अल्लाह ताला के दिफा में, इसमें अल्लाह ताला की शान बयान हुई और उसका मकाम और मरतबा, और उसमें नबी अलैहि सल्लत व सलाम का मकाम और मरतबा बयान हो गया। तो हमें पता चल गया, हमें अपने लिए भी, शऊर के लिए भी, देखें ये नहीं है सिर्फ काफ़ी कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वो कौन है अल्लाह, जब तक यही नहीं पता तो किसकी इबादत करते हो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों की, सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप ने बता दिया कि एक अल्लाह है उसकी इबादत होती है, तुम भी उसकी नमाज पढ़ो, बस ये हमें आज तक किसी ने सिखाया वो अल्लाह कौन है, ये सवाल किया आपने कभी? तो ये है जवाब उसका। तो इबादत सिर्फ ये नहीं होती कि आप कह दें मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, इबादत ये होती है वो कौन है अल्लाह जिसकी आप इबादत करते हैं, इस चीज को जानना और इस चीज को समझना कि वो रब कौन है जिसके आगे मैं झुकता हूं, और मैं क्यों झुकता हूं, क्योंकि हुव अल्लाहु अहद, क्योंकि वो समद है, क्योंकि लम यलिद है, क्योंकि लम युलद है, क्योंकि लम यकुल लहू कुफुवन अहद है। ये है हमारा जवाब उसको जो कहे कि तुम मुसलमान क्यों हो, इस्लाम के अलावा फलां दीन है, फलां दीन है, तुम्हें क्या पता कि ये सच्चा दीन है? ये सच्चा दीन है क्योंकि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं, और ये दीन है जो मुझे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर जाता है, और मेरे अल्लाह का ये तारुफ है। ये आपका सेलिंग पॉइंट, ये आपका दावा के लिए सबसे बड़ी ये सूरत है जो आप इस्तेमाल करते हैं जब आप इसको पढ़ते हैं या इसको समझा दें लोगों को, जिस वक्त आप दावा करें, और फिर उसके बाद आप देखें दूसरा आपको क्या जवाब देता है। अल्लाह ताला इस सूरत को हमारे दिलों में उतार दे, अल्लाह ताला इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें इसको बार बार समझ के पढ़ने वाला बना दे, और वाकई जैसे इस सूरत में बयान किया गया अल्लाह ताला इस तरह का ही हमारा ईमान हो। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد